Om Sri Sai Ram. I offer my most humble pranams at the divine lotus feet of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. I would like to extend my warm Sai Ram to respected Sri R.G. Ratnakar Guru, respected secretary, respected All India President, respected elders and dear brother and sister. I want to place a brief report of Sri Sathya Sai Seva Organization structure. In Sikkim, total population is 6 lakhs plus. Total number of Sai devotees is 55% to 60%, means 3.3 lakhs to 360 lakhs. Number of Samiti, we have 34 numbers. Number of Mandali in Sikkim is 123. Number of Bal Vikas Center is 384. Number of Bal Vikas students at present 6,000 plus. Number of Bal Vikas Gurus 631. And number of disaster management team is 650 plus. I am going to present our state's activity report in brief. So may I request video presentation to be played, Sai Ram. Out of Bhagwan's immense grace, we are doing Sai works throughout the year with full zeal and devotion. All calendar activities of the organization carried out, but apart from this, Swami have graced us to do many. To mention a few, disaster management team is contributing prayers and love in action in different disaster affected places, away from Sikkim, relief works to the victim of Kerala flood, Darjeeling fire hazard, Nepal earthquake, Bihar flood. DM team of Sikkim did a relief and resources work in Assam's Dhubri district, where 60 sevadals gave their service, distribution of clothes and Narayan Seva to 1,500 Narayans. Recently, at Song village in West Sikkim, a huge landslide occurred. We rescued the stranded cows, restored drinking water supply for 76 households, constructed a bamboo bridge for stranded people. Mass Seva program on the occasion of International Seva Dal Day, that is, falls on 23rd September, where the activity of cleanliness and others done simultaneously at different venue throughout the state. About 18,000 people participated. Other NGOs joined us. This 3 hours of Seva was reported live from the venue by IT personnel of our samitis. During annual sports day, ambulance service was unveiled by His Excellency, the Governor of Sikkim, Sri Ganga Prasad. At present, our state is adopted and working at 12 Sri Sathya Sai VIP and 5 Sri Sathya Sai Vidyajyoti School. Parupkarartham idam sarira. We are here for others, not for ourselves. It's true that man by birth is a social animal and has the greater responsibilities in the society where he resides. As such, his prime duty is to live for others, as Bhagwan Baba always says. Karmanye vadhikaraste ma phalesu kadachana. Ma karma phala hetur bhur mate sangvatsva karmani. You have rights to work, but have no rights to ask for the reward. We are really so fortunate that we got the opportunity to have darshan, Shambhasanam and Padasivanam of the avatar. In this Kali Yuga, who has incarnated in this universe for spreading the message of universal love and humanity, where we are also been chosen to be part of this divine mission. This report highlights the divine work carried out by the Bhajan Mandali, Samiti, district in the state, where every unit of the organization have taken much effort in spreading the message of universal love in villages in the state through spiritual motivation, awareness camps, Bal Vikas, selfless service in the society, Vidya Jyoti project, disaster management program, and many more. Since every member of the organization are the part of his divine mission, it is our prime responsibilities to follow the path shown by him and carry the divine work with utmost dedication, devotion, and sincerity. Bhagwan has proclaimed, "The golden age begins now. It begins with you." Service to man is service to God. Work is worship. Duty is God. The time has come to understand this proclamation made by Bhagwan decade ago and our prime responsibilities. Let us pray to our beloved Swami to bless us with more energy and courage for carrying his divine works. Thank you, Swami, for giving me this great opportunity to place the detailed report of state organization in front of you, Swami, and all revered devotees assembled here. Our next program is drama based on Tihar, Deepavali. Swami, we the devotee of Bhagwan from Sikkim state are extremely grateful to Bhagwan for he has bestowed upon us this opportunity to present before Bhagwan and all the devotees here a drama depicting the story of festival celebrated by the entire state of Sikkim, which is known by the name of Tihar, Diwali. This festival falls in the month of October, November, sometimes in October, sometimes in November, or Kartika Mass, and is celebrated across 5 days, with each day dedicated to a certain life form. This 5-day long festival is known as Yama Panchak. The first day is called Kak Tihar, worship of crows. When crows are worshipped as the messenger of death, the cawing of crows and ravens symbolizes sadness and grief in Hinduism. The second day is Kukur Tihar, worship of the dog. When dogs are worshipped as protector of the house. The third day is Gai Tihar, worship of cow, and Lakshmi Puja. On this day, cows are worshipped early in the morning and goddess Lakshmi is worshipped in the evening. On this evening, people celebrate with much enthusiasm by lighting their houses, singing, dancing, and merrymakings. Likewise, a small hillock made out of cow dung, representative of Govardhan Parvat, is worshipped on the 4th day of the festival called Govardhan Puja. The 5th or the last day of the Tihar is Bhai Tika, similar to Bhai Dooj, the day when brother receive Tika from their sisters and vice versa. During the festival, people decorate their houses with colorful lights, flowers, and oil lamps. They also cook and partake various delicacies, including sweets and sel roti, a traditional Nepali food made from rice flour in the shape of a ring. Playing Deusi Bhailo and worshipping various animals and birds as parts of nature and significant aspect of this festival. The festival of Tihar is celebrated with house being decorated by flower and with diyas lighting up every house. But what makes this festival truly beautiful is that this festival is celebrated across the state by all people irrespective of religion or any other division and caste and creed. This festival truly is a testimony to Bhagwan's divine word that there is only one religion, the religion of love. There is only one caste, the caste of humanity. Swami, hamila yasto sabhagya pradan garnu bhayo, hami sadai abhari chhau. Hamro rajya Sikkim lai sadai ashirwad pradan garnuhos. Yo divya karjalai agi badhaunalai sanghatan ko pratyek office bearer lai shakti pradan garnuhos. जसमा साई मिशनलाई राज्यमा धेरै अघि लान सकौं. तपाईँको दिव्य प्यारमा हामी प्रत्येकलाई सधैँ बाँधि राखिदिनुहोस्. वान्स अगेन थ्याङ्क यू स्वामी, थ्याङ्क यू भेरी मच. नाउ लेटेस्ट विटनेस दिस ड्रामा प्रेजेन्टेसन बाई आवर साई युथ एन्ड अफिस बेयरर अफ द अर्गनाइजेसन. जय साई राम.
अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्तर को सतत उच्च बनाए रखने में त्योहारों और पर्वों का विशेष महत्व होता है. भारत एक ऐसा देश है जहां समय समय पर भगवान का आगमन होता रहा है, इसीलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है. ऐसी भूमि पर प्रत्येक दिन कुछ न कुछ पर्व या त्योहार होता रहा है. ऐसा ही एक पर्व है तिहार. उसमें भी नेपाली समुदाय में इस पर्व को और ज्यादा मान्यताएं और महत्व दे दी गई है. नेपाली समुदाय में इस पर्व की मुख्य अवधि कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीया तक मनाया जाता है. इस पर्व को 5 दिन का अंतर संबंध विशेषकर यमराज के संग जुड़ा है, इसलिए इसे यमपंचक या भातृ द्वितीया भी कहा जाता है। कहते हैं कि यमपंचक के समय यमराज के सम्मान में जो लोग अपने घर साफ सफाई कर यमराज का अति प्रिय मिट्टी से बनी हुई दिए जलाकर पूजा अर्चना आदि करते हैं, उस घर में कभी अकाल मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और कष्टदायी मृत्यु जैसा भयानक मृत्यु की भय कभी नहीं होता। इस तरह यमपंचक, भातृ द्वितीया और दीपावली या त्योहार अंतर्गत आने वाले ये पांच महापर्व में सबसे पहले आता है काग अर्थात कौवा त्योहार। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि त्योहार का पहला दिन है। यमराज के अनेक दूतों में से कौवा एक प्रमुख दूत है। कौओं को यम के दूतों में से एक चतुर और शीघ्र कर्म करने वाला दूत माना गया है। कहते हैं कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने लंका विजय कर अयोध्या के लिए प्रस्थान करने की खबर अयोध्या वासियों तक पहुंचाने के लिए कौओं को ही आदेश दिया गया था, इसलिए कौओं को एक यम के दूत और संदेश वाहक के रूप में इस दिन पूजा जाता है। दक्षिण दिशा की ओर दोनों हाथ जोड़कर यमराज से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, मृत्यु न पाप हस्ते न काले न भार्यथा सह त्रयोदश पक्ष चतुर्दशी तिहार के दूसरे दिन कुकुर तिहार मनाया जाता है, जो मानव सभ्यता के हरेक प्राचीन खोजों में समाज से कभी दूर नहीं होने वाला एक वफादार और साहसी जीव के रूप में परिचय है। आज कुकुर को पूजने का दिन। वैदिक सनातन धर्म में कुकुर को विशेष महत्व दिया गया है। कुकुर मानव सभ्यता से ही मानव संघ अत्यंत नजदीक एक वफादार जीव रहा है। ऋग्वेद में स्पष्ट रूप में समरा के विषय में वर्णन किया गया है। समरा यानी कुकुर की माने स्वर्ग के राजा इंद्र का खोया हुआ वस्तु वापस पाने में मदद किया था। वैदिक सनातन हिंदू परंपरा अंतर्गत कुकुर को एक अभिभावक, सुरक्षा कर्मी और यमराज का एक प्रमुख दूत के रूप में माना गया है, और मृत्यु उपरांत भी मोक्ष के द्वार पर कुकुर ही पहरा देता है ऐसा माना गया है। महाभारत में भी सत्यवादी युधिष्ठिर के संग स्वर्ग द्वार तक गया था ये, इसलिए आज का दिन कुकुर को भक्ति भाव से पूजा जाता है। बच्चों, अब मैं तुम्हें तिहार का ऐतिहासिक कहानी बताती हूँ। एक समय की बात है कि कि युद्ध में इंद्रदेव से हार कर दैत्यराज बलि शुक्राचार्य के शरण में गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उनके अंदर देव भाव जगाया। कुछ समय बाद दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। प्रभु की महिमा कितनी विचित्र है कि कल के देवराज इंद्र आज सब कुछ छोड़कर एक साधारण देव बन गए। वह दर दर भटकने लगे और अंत में व्याकुल होकर अपनी माँ अदिति के शरण में गए। इंद्र की यह दशा देखकर उनका हृदय फटने लगा। अदिति ने प्रयोग व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत के अंतिम दिन भगवान ने प्रकट होकर अदिति से कहा, हे देवी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। इंद्र का छोटा भाई बनकर उनका कल्याण करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आखिर वह घड़ी आ ही गई कि जब भगवान ने अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। भगवान को पुत्र रूप में पाकर अदिति खुशी से झूम उठी। कश्यप जी को आगे करके भगवान का उपनयन संस्कार आदि करवाया। यहीं से वामन रूपी भगवान को राजा बलि के विषय में ज्ञात हुआ और उन्होंने सुना कि राजा बलि भृगु कक्ष नामक स्थान में अश्वमेघ यज्ञ कर रही है, जिस यज्ञ की पूर्ण होने पर तीनों लोक में वे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते। भगवान वहां के लिए प्रस्थान हुए। भगवान यज्ञोपवीत धारण किए, एक हाथ में कमंडलू और दूसरे हाथ में छत्र लिए हुए ब्रह्मचारी वामन के रूप में भगवान राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचे।
राजन, आपका 99 यज्ञ पूर्ण हो गया, आपको बधाई हो। अब एक यज्ञ रह गया है और यदि यह भी निर्विघ्न पूर्ण हो गया तो 100 यज्ञ पूरी हो जाएगी और उसी समय इंद्रपद सर्वदा के लिए आपका हो जाएगा। स्वर्गलोक पर देवताओं का वचर्स्व सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा।
तब तीनों लोकों में असुरों का एक छत्र राज्य हो जाएगा गुरुदेव।
अवश्य।
जिस समय राजा बलि 100वें यज्ञ का संकल्प करने जा रही थी, ठीक उसी समय वामन भगवान वहाँ पहुँचे। एक वटुक वामन के रूप में दान मांगने भगवान राजा बलि के यज्ञशाला में पधारे।
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, यज्ञशाला के द्वार पर एक याचक आया है और वो आपसे मिलने की याचना कर रहा है।
महाराज, यज्ञ आरंभ करने की मुहूर्त निकलता जा रहा है।
महर्षि, जब तक बलि के द्वार पर एक भी याचक बाकी अथवा असंतुष्ट रह जाए, तब तक यज्ञ कैसे आरंभ हो सकता है? जब हमारे राज्य में किसी को कुछ भी मांगना शेष न रह जाए, तभी तो हम यज्ञ करने की अधिकारी होंगे।
राजन, हम आपके द्वार पर एक याचना लेकर आए हैं।
हे ब्रह्मचारी, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गाय, सोना, चांदी, अनमोल रत्न, मणि, माणिक्य, बड़ा घर, संपत्ति से भरा गांव, हाथी, घोड़ा, रथ, जो इच्छा हो मांग लीजिए। हम वचन देते हैं आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे।
हे असुरराज, मैं जानता हूँ कि आप सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जिसे आप ना दे सकते हो, परंतु शास्त्र कहता है कि एक विद्वान ब्राह्मण को उतना ही दान स्वीकार कर लेना चाहिए जितने की उसकी आवश्यकता हो। इसलिए हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है। आप कृपया करके थोड़ी सी भूमि प्रदान करें जितनी की मैं अपने पैरों से 3 पग में नाप सकूं, बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा।
3 पग भूमि?
जी राजन।
आपके पैर से नापकर 3 पग भूमि?
जी राजन।
हा दीपक भूमि, ब्राह्मण कुमार, हम तीनों लोकों के एकमात्र अधिपति है। हम सप्तदीप नवखंड आपकी चरणों में समर्पित कर सकते हैं। हमसे इतना मांग लो कि जीवन में दोबारा किसी से मांगने की आवश्यकता न पड़े। हमारी सामर्थ्य अनुसार मांग लो ताकि तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाए।
संसार में सब कामनाएं किसकी पूरी होती है राजन? मनुष्य को जितनी मिलती है उतनी ही उसकी इच्छा बढ़ती जाती है। आपके पास सारी भूमि है, क्या आपकी इच्छा इससे पूर्ण हो गई? नहीं, अभी भी आपको स्वर्ग का अधिपति बनने की इच्छा है। स्वार्थ और लोभ जितनी बढ़ती है उतनी ही लोभ में फंस जाते हैं। इसलिए हे राजन, मैं आपकी दानवीरता की सम्मान करते हुए केवल तीन पग भूमि की दान मांगता हूँ।
अच्छी बात है, जितनी आपकी इच्छा हो ले लीजिए।
मंत्रवद होकर दान का संकल्प कीजिए राजन।
राजन, ये आप क्या करने जा रहे हैं? जिसे आप साधारण बटुक ब्राह्मण समझकर तीन पग भूमि दान करने जा रहे हैं, वो देवताओं के काम बनाने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु है। ये तीन पग भूमि में तुम्हारा सारा ऐसो आराम, राज्य, वैभव सारा प्राप्त कर लेंगे और इंद्र को दे देंगे। ये दैत्य जाति पर बहुत बड़ा अन्याय होगा और वैसे भी आपको अपनी संपत्ति का केवल 5% ही दान करने का अधिकार है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मनुष्य अपने धन को 5% में बांट दे। धर्म के लिए, यश के लिए, धन की वृद्धि के लिए, भोगों के लिए रखे और स्वजनों की सहायता करने में लगाए। इसलिए ऐसा कार्य ना करे असुरेश्वर, अन्यथा जिस फल को पाने के लिए मैं आपसे 100 यज्ञ करा रहा हूँ, वो सारा फल ब्राह्मण छल से ले जाएगा।
गुरुदेव, एक उदार और करुणाशील मनुष्य किसी अपात्र याचक की इच्छा पूर्ण करके यदि दुर्गति भोगता है तो वो दुर्गति भी शोभा की बात होती है। और यदि यह सत्य है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में मेरे यज्ञशाला में पधारे हैं तो मेरे लिए यह गौरव की बात होगी। हे महर्षि, वेद विधि के ज्ञाता आप लोग भगवान विष्णु के दर्शन के लिए यज्ञ तप अनुष्ठान आदि करते हैं, तब वे प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। वैसे भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? क्षमा करे महर्षि, मैं बटुक ब्राह्मण की इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा, अन्यथा मेरे कारण मेरे पूर्वजों की कृति धुंधली हो जाएगी।
परंतु राजन,
क्षमा करे महर्षि, मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ और एक बार देने का प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, और अब एक ठग की भांति धन की लोभ से इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं नहीं दूंगा?
अरे मूर्ख है तो तू अज्ञानी, परंतु स्वयं को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरा अपमान कर रहा है, तूने मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो देगा।
गुरुदेव, मुझे आपका श्राप स्वीकार है, परंतु मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु, मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज विरोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करता हूँ कि ब्राह्मण पुत्र बामन की इच्छा तीन पग भूमि दान करता हूँ। ब्राह्मण देवता अपने पैर से तीन पग भूमि नाप कर ग्रहण करें।
दैत्य राजबलि, तुमने मुझे तीन पग भूमि दान देने का वचन दिया था। 2 पग में तो मैंने सारा त्रिलोक ही नाप लिया। 1 पैर से मैंने भूलोक और 2 पैर से स्वर्ग लोक नाप लिया। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, परंतु तुम्हारा प्रतिज्ञा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा। इसलिए 3रा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। तुम्हारा वचन झूठा हो गया।
नहीं भगवान, मैं अपने वचन को पालन करके दिखाऊंगा। आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रखिए।
महात्मा बलि, तुम सच में दृढ़ प्रतिज्ञ हो, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। गुरु के श्राप और हमारे माया से भी भयभीत नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूर्ण किया। हम तुम्हें वो स्थान देते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। सार्वनीय मानवंतर में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम सुतल लोक में अपने दादा महाराज प्रहलाद के साथ आनंद पूर्वक निवास करोगे। तुम वहाँ सदा मुझे अपने पास पाओगे।
दीपावली के सांस के समय सभी अपने अपने घरों दीपों और फूलों से सजाकर माता लक्ष्मी जी की पूजा करती है और ईश्वर से सुख और शांति की कामना करता है। कार्तिक महीने की अमावस्या के रात में अपनी संस्कृति के अनुरूप पालन करते हुए इस त्योहार में नेपाली समुदाय का चेली बेटियों ने परंपरा से चली आ रही अपनी संस्कृति भैलेनी गीत बड़ी हर्षोल्लास के साथ गाते गाते सभी के घर घर जाने की परंपरा चली आ रही है।
बहू, चलो हमारे साथ आज गौ माता के पूजा करेंगे।
ठीक है माँ।
ओहो, नीचे घर की और पड़ोस घर की बहनें आई हैं।
जी काका, आज भैलो खेलते खेलते इस समय आपके घर पहुंच गया। काकी नहीं है?
काकी अंदर काम कर रही है।
ओहो, आप लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, अभी अभी पूजा समाप्त तो हुआ है। मैं तो भैलो के लिए सेल्लोटी बना रही थी। बहू भी तो भैलो खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ चली गई है।
अच्छा बहन जी, आप लोग बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आकर भैलो खेलिए।
को दीना हरो भैलो
बहू, आज तो काम बहुत है। थोड़ा जल्दी जल्दी करके बैल का पूजा भी करना है और गोवर्धन पूजा भी करना है, इसलिए बेटे आने से तुम दोनों मिलकर बैल का पूजा करना है, ठीक है ना?
माँ, आज के दिन में क्यों बैल और गोवर्धन की पूजा करता है?
बहू, तुम पिताजी से पूछो तो और बेहतर होगा।
देखो बहू, हमारी पौराणिक मान्यता अनुसार बैल ने हमारे लिए खेत जोतकर हम लोगों के लिए अन्न प्रदान करते हैं, इसलिए इस ऋण को कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बैल पूजा करते हैं। और गोवर्धन पूजा के पौराणिक मान्यता यही है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों और गोकुल वासियों को इंद्रदेव के जल प्रकोप से रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसलिए गोवर्धन पर्वत को अन्न के पहाड़ बनाकर पूजा करते थे।
ओ, कृष्ण भी आ गया, अब तुम दोनों जाके बैल का पूजा करके आओ।
ओहो, आज इस त्योहार के पर्व में हमारे देव से कर भी आया है, बहुत खुशी की बात है। आइए आइए, आप लोग शुरू कीजिए।
ए झिली मिली झिली मिली, एक को झिली मिली, ए फूल को झिली मिली, ए पत्ती को झिली मिली, ए घरपति बाबई, ए घरपति आमई, ए घेरा भाई, ए आई पुग्यो हामी, सरस्वती जीले ए राजय गरुण, ए दुर्गा जीले ए शक्ति दिराहुं, ए असय मा घर का ए सबै जन का, ए रोगै कष्टा ए दूरै हाउन।
ल है हजुर, दैवले साँचे अर्को साल बाँचे, यसै गरी रमाइलो गर्दै हजुरको घर आँगनमा फेरि पनि आउला, आजलाई बिदा दिनुहोस् है।
नमस्कार काका, नमस्कार काकी, हम मारुनी टोली आपके घर आंगन पे मारुनी नृत्य करके तिहार का मनोरंजन करना चाहते हैं, हमें आज्ञा दीजिए।
बहुत अच्छा, आप लोगों का कार्यक्रम प्रस्तुत कीजिए।
धन्यवाद काका, आपके घर में हमें आज मारुनी करने का सौभाग्य मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद।
ओम श्री साई राम। के या च्याब्रुंग सिक्किम और अन्य हिमालय के राज्यों के लिंबू जनजाति का पवित्र और पौराणिक ढोल है। यह ढोल जो हंसिंग वृक्ष से बना होता है, उसके ताल पर शादियों में किया जाने वाले नृत्य प्रकृति और जीव जंतुओं के सम्मान में होता है। इस नृत्य का श्रेय भगवान तगिरा निंगवाफुमाग के पुत्र और पुत्री को जाता है। इस नृत्य के कई प्रकारों में से एक गृह निर्माण और प्राण प्रतिष्ठान के समय सुखी संपन्न और शांतिपूर्ण जीवन के लिए करने का विधान भी है। हमें आज यहाँ इस नृत्य को प्रस्तुत करने में परम आनंद महसूस हो रहा है, इसलिए हम सिक्किम के बाल विकास के विद्यार्थी इस नृत्य को हमारे परम पूज्य स्वामी को समर्पित करने जा रहे हैं। जय साई राम।
Thank you. भाई उठिए ना, मैं आपकी बहन आपको टीका लगाने आई हूँ, खूब आशीष देने आई हूँ। भाई उठ जाइए ना।
अब तुम्हारा भाई नहीं उठेगा, कभी नहीं उठेगा, सदा के लिए। आज मैं उसे लेने आया हूँ, अब उसके इस जगत में रहने का आयु समाप्त हो चुका है। आओ बड़ी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने साथ यमलोक ले जाऊंगा। सेवको इसके प्राण को उठाओ।
नहीं नहीं यमदेवता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे भाई के प्राण मत लीजिए। इस संसार में मेरा इसके सिवा कोई नहीं है, यही एक भाई है, इसके प्राण दान दीजिए।
यमुना, मुझे भी विधि का प्रदान और नियम का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो संसार कैसे चलेगा। कुछ और मांग जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन बलि का प्राण नहीं दे सकता, मैं भी विवश हूँ यमुना।
ऐसा है तो मुझे आज अपने भाई को तिलक लगाने का समय दीजिए।
अवश्य यमुना, मैं तुम्हारी प्यार भरी याचना को स्वीकार करता हूँ, अपने भाई को तिलक लगा दो, तब तक यही मैं इंतजार करूँ।
वचन देना होगा।
कैसा वचन यमुना?
मेरे भाई को टीका लगाने के पश्चात ही वो वचन मैं आपसे लूंगी।
यमुना, मैं तुमको वचन देता हूँ।
मैंने अपने भाई के गले में लगाया मखमली माला और चारों तरफ बनाई तेल की सीमा, जब तक सूख नहीं जाती तब तक आप मेरे भाई के प्राण नहीं ले सकते, और जिस दिन यह माला और तेल की सीमा सूख जाती है उस दिन आप उनके प्राण ले जा सकते हैं।
यमुना, आज के दिन तुमने अपने भाई के प्रति अपार स्नेह और ईश्वर कामना से तुम्हारे भाई के प्राण को वापस करने के लिए मैं बाध्य हो गया। आज के दिन मैं तुम्हारे भाई के प्राण ले भी नहीं जा रहा हूँ।
पर्व त्योहार का विशेषता यह है कि हमारे राज्य सिक्किम में सारे जातियों, धर्म और संप्रदायों के लोग इस पर्व को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, इसलिए यह पर्व भगवान के दिव्य संदेश देयर इज ओनली वन रिलीजन, द रिलीजन ऑफ लव, देयर इज ओनली वन कास्ट, द कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, There's only one language, the language of heart. There's only one God. He is omnipresent. का एक सच्चा मिसाल माना जा सकता है।
शांति प्रेम सबको दीजो
Sairam. Invoking Bhagwan's divine blessings, tomorrow is the second day of the two-day Parthi Yatra by the devotees from the state of Sikkim. Tomorrow's morning session in Sai Kulwant Hall will commence at 8 o'clock with Vedam chanting. At 8:20, the devotees from Sikkim will be offering a music program at Bhagwan's divine lotus feet. The morning session in Sai Kulwant Hall will conclude with bhajans and Mangalarti, followed by Bhagwan's Divya Darshan. The devotees from the United States of America have been here for their three-day Parthi Yatra from 1st to 3rd of January. Tomorrow's evening session in Sai Kulwant Hall will commence at 4:30 with Vedam chanting. At 4:50, we'll be addressed by two ardent devotees of Bhagwan, Dr. Ravi Dabir, followed by Dr. Ramesh Vadwani. As a concluding offering of their three-day Parthi Yatra, the young adults from the United States will be offering a devotional music program at Bhagwan's Divine Lotus Feet. The evening session in Sai Kulwant Hall will conclude with bhajans and Mangalarti, followed by Bhagwan's Divya Darshan. Jai Sai Ram.
Om Shri Sai Ram. Swamivari Divyanugraha Asisalato.
సిక్కిం రాష్ట్రం నుండి విచ్చేసిన భక్తుల 2 రోజుల పర్తియాత్రలో రేపటి 2వ రోజున సాయి కులవంత్ సభామండపంలో ఉదయ కార్యక్రమం 8 గంటలకు వేద పఠనంతో ప్రారంభమవుతుంది. 8:20 సిక్కిం రాష్ట్రానికి చెందిన భక్తులు ఓ సంగీత కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తారు. రేపటి ఉదయ కార్యక్రమం భజనతో కొనసాగి మంగళహారతితో ముగియను. అనంతరం స్వామివారి దివ్య దర్శనం. అమెరికా దేశం నుండి భక్తులు 1వ తేదీ నుండి 3వ తేదీ వరకు 3 రోజుల పర్తియాత్రగా ప్రశాంతి నిలయానికి విచ్చేసినారు. సాయి కులవంత్ సభామండపంలో రేపటి సాయంకాల కార్యక్రమం 4:30 వేద పఠనంతో ప్రారంభమవుతుంది. 4:50 స్వామివారి చిరకాల భక్తులు డాక్టర్ రవి డాబీర్, తదుపరి డాక్టర్ రమేష్ వద్వాని గారు ప్రసంగిస్తారు. వీరి ప్రసంగాలనంతరం అమెరికా దేశ సాయి యువత ఓ సంగీత కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తారు. రేపటి సాయంకాల కార్యక్రమం భజనతో కొనసాగి మంగళహారతితో ముగియను. అనంతరం స్వామివారి దివ్య దర్శనం. జై సాయిరాం.